अध्याय 11 चिकित्सीय सहायता कार्य। सर्वप्रथम आवश्यक कार्य। अपनी सेवा व प्रचार कार्य के दौरान प्रभु यीशु ने अधिक समय प्रचार करने की अपेक्षा बीमारों को चंगा करने में किया। एक सच्चे समाज सुधारक के सामने चिकित्सा सहायता संबंधी कार्य कई घरों के दरवाजे खोलेगा। सबसे सही चिकित्सा संबंधी सहायता कार्य ही प्रचार कार्य का अभ्यास करना है। चिकित्सा सहायता कार्य सर्वप्रथम प्रचार कार्य था। वचन के प्रचार द्वारा और चिकित्सा सहायता कार्य के द्वारा प्रचार कार्य और व्यवहार रूप में किया जाता है। जगत के उद्धारकर्ता ने अपना अधिक समय सुसमाचार प्रचार कार्य के अलावा दुखी व बीमारियों से ग्रसित लोगों को चंगा करने में समर्पित किया। उसकी अंतिम हिदायत जो उसके शिष्यों को उसने दी, उसके प्रतिनिधि होने के नाते वे बीमारों पर हाथ रखें कि वे चंगे हो जाएं। और जब प्रभु आएगा वो उन्हें अपने पास बुलाएगा, जो उन बीमारों से मिले और मुसीबत के मारों की जरूरतों को पूरा कर उन्हें सांत्वना दी। वो ऐसी योजना बनाता है कि चिकित्सा सहायता के काम द्वारा एक मार्ग तैयार हो, जिससे होकर लोगों तक जीवित रहने की सच्चाई जो प्रभु यीशु है बताई जा सके। और वो है 3 स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया संदेश। यदि ये योजना सही काम करती है तो सुसमाचार अंधकार में नहीं होगा, ना ही उसकी वर्षद रुकेगी। पहले जरूरतमंदों की सांसारिक जरूरतों को पूरा करो और उनकी शारीरिक आवश्यकताएं और परेशानियां व बीमारियों से निजात दिलाओ। तब तुम उनके हृदय तक पहुंच पा सकोगे, जहां तुम गुणों का एक अच्छा बीज तथा धार्मिकता का पौधा लगा सकोगे। कोई भी वस्तु अधिक आध्यात्मिक शक्ति और अधिक उत्सुकता, भावनात्मक गहराई आदि प्रदान नहीं करेगी, जितना कि गरीबों और निराश हताश लोगों से मिलकर और उनकी सेवा कर मिलता है। ऐसों को प्रभु की रोशनी दिखाना और उनका विश्वास प्रभु में मजबूत करना। एक स्वर्गीय उदाहरण। प्रभु यीशु मसीह महान चिकित्सक सेवक हमारा एकमात्र उदाहरण है। उसने बीमारों को चंगा किया और सुसमाचार प्रचार किया। उसकी सेवा में चंगाई और शिक्षा आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। आज भी उन्हें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। यीशु ख्रीष्ट के सेवकों को भी उसके उदाहरण का पालन करना चाहिए। जैसे वो जगह जगह गया, दुखियों को सांत्वना दी, रोगियों को चंगा किया, तब उन्हें अपने आने वाले राज्य के बारे उस महान सत्य को रखा। यही काम आज उसके शिष्यों का भी होना चाहिए। प्रभु यीशु का उदाहरण उन सभी को अनुकरण करना चाहिए जो स्वयं को परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। अपने साथियों की भौतिक आवश्यकताओं से छुटकारा दिलाना, जिसके बदले उनकी कृतज्ञता सारे बंधन तोड़ देगी और आपको इस योग्य बना देगी कि आप उनके हृदयों व मनों तक पहुंच सकें। इस विषय पर उत्सुकतापूर्वक सोचिए, विशेषकर वे लोग जो चिकित्सा सहायता करने वाले, जो आत्मा में, शब्दों और आचरण द्वारा प्रचार करते हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं। वो ही हमारा स्वर्गीय चिकित्सा एवं वचन की सेवकाई करने वाला है। सुसमाचार सेवकाई के साथ जुड़ना। सुसमाचार और चिकित्सा सहायता कार्य दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना है। सुसमाचार को सही स्वास्थ्य सुधार सिद्धांतों के साथ एकजुट होकर शक्तिशाली बनना है। मसीहियत को वास्तविक जीवन के रूप में प्रयोग करके दिखाना है। उत्साह से पूर्ण भली भांति किए गए सुधार कार्य किए जाने हैं। हमें लोगों के सामने स्वास्थ्य में बदलाव लाने के सिद्धांतों को पेश करना है। सब अपनी ताकत से करते हुए स्त्री व पुरुषों की अगुवाई कर उन्हें बताना कि स्वास्थ्य संबंधी इन सिद्धांतों का क्या महत्व है, क्या जरूरत है, और उन्हें उन सिद्धांतों का अभ्यास करने को कहें। ये एक स्वर्गीय योजना है जिसे शिष्यों ने पालन किया और अब हमें पालन करना है। भौतिक चंगाई के साथ सुसमाचार का काम भी जुड़ गया है, और इस सुसमाचार प्रचार से वचन की शिक्षा और शारीरिक चंगाई दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। चिकित्सा सेवा कार्य और प्रचार सेवा कार्य ऐसे जरिए हैं जिनसे होकर परमेश्वर चाहता है कि लोगों की भलाई का स्रोत परमेश्वर की ओर से लगातार जारी रहे। ये काफी कुछ उस नदी के समान होंगे जो कलीसियाओं को लगातार पोषित करती रहें, सींचती रहें। हमारे प्रचारकों को, जिन्होंने वचन का प्रचार करने का अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें साधारण इलाज करना भी सीखना चाहिए, ताकि वे बड़ी बुद्धिमानी से एक स्वास्थ्य प्रचार सेवक के समान परिश्रम करें। जैसे पुस्तक बेचने वाले एक जगह से दूसरी जगह जाते, वैसे ही एक स्वास्थ्य सेवक बहुत से बीमारों को ढूंढ सकता है। उसे बीमारियों के होने के कारणों का पता होना चाहिए और उनका सामान्य इलाज करना आना चाहिए, जिससे वो पीड़ित व्यक्ति को आराम पहुंचा सके। इससे भी अधिक उसे विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए उस बीमार के लिए, प्रभु यीशु को एक महान चंगा करने वाला प्रभु कहकर। और यदि वो इस प्रकार प्रभु में चलता और कार्य करता है, तो उसके सहायक स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, जो उन बीमारों के हृदय तक पहुंचने में मदद करेंगे। क्या ही विस्तृत और बड़ा कार्यक्षेत्र प्रचार सहायकों के लिए, जो विश्वास योग्य एवं समर्पित पुस्तक विक्रेता हैं। उसे इस काम को पूरे जोश से पूरा करने पर क्या ही आशीषें प्राप्त होंगी। हर एक सुसमाचार प्रचारक को मालूम होना चाहिए कि एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के क्या सिद्धांत हैं, जो उसको सौंपे गए काम का एक जरूरी हिस्सा है। इस काम के लिए बहुत जरूरी है और सारा संसार इस कार्य के सामने है। संदेश का दाहिना हाथ। बार बार मुझे निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य सेवा प्रचार कार्य को ठीक उसी प्रकार समझना है जैसे तीन स्वर्गदूतों का संदेश। जिस प्रकार बांह और हाथ शरीर ही के हैं, स्वर्गीय सिर के निर्देशानुसार उन्हें एक होकर काम करना है, प्रभु यीशु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने के लिए। सचरूपी शरीर के लिए सीधे हाथ की बांह को सदा क्रियाशील होना है, लगातार काम करते रहना है, और परमेश्वर उसे ताकत प्रदान करेगा, किंतु उसे शरीर नहीं बन जाना है। ठीक उसी प्रकार शरीर बांह से ये न कहे, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। शरीर को बांह की जरूरत है एक कारगर और बहुत जरूरी काम करने के लिए। दोनों को अपना सौंपा गया काम करना है। यदि दोनों में से एक भी अकेले काम करना चाहेगा तो बड़ी हानि उठाएगा। स्वास्थ्य चिकित्सा प्रचार कार्य करना जरूरी है, इसे प्रभु के कार्य के लिए होना आवश्यक है, जैसे हाथ है शरीर के लिए। स्वर्गीय सहयोग। प्रभु यीशु को हरेक पीड़ित के कष्टों का एहसास है। जब शैतानी ताकत मनुष्य को कष्ट पहुंचाती हैं, तो ख्रीष्ट को वो शाप महसूस होता है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है और जीना कठिन होता है, तो कष्ट प्रभु यीशु को होता है। वो आज भी एक बीमार को वैसे ही चंगा करना चाह रहा है जैसे उसने तब किया था जब वो इस पृथ्वी पर था। प्रभु के सेवक उसके प्रतिनिधि हैं और उसके कार्य करने वाले स्रोत भी वे ही हैं। वो चाहता कि उनके द्वारा मनुष्यों तक वो चंगाई की सामर्थ पहुंचे। परमेश्वर ने अपने सेवकों को ठहराया है कि उनके द्वारा बीमारों, बदकिस्मत और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग उसकी आवाज सुने, और मानवीय माध्यम के द्वारा वो उनका सहायक बनना चाहता है, ऐसा सहायक जो संसार में और कोई नहीं। ख्रीष्ट उन स्वास्थ्य चिकित्सक सेवकों का सहयोग करता है जो इस काम में लगे होते हैं। प्रभु ने उनके द्वारा काम किया, जहां कहीं वे गए बीमार चंगे हुए और गरीबों को सुसमाचार प्रचार किया गया। प्रभु यीशु व्यक्ति के रूप में इस जगत में नहीं है कि वे हर शहर, कस्बा व गांव गांव जाकर बीमारों को चंगा करें, किंतु वही काम जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए शुरू किया था, वो हमें दिया है कि हम उस काम को, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का है, आगे बढ़ाएं। प्रत्येक कलीसिया का कर्तव्य। एक समाचार स्वास्थ्य संबंधी सुधार का प्रचार भी हर कलीसिया द्वारा किया जाना है। हमारे देश के हर कलीसिया में चिकित्सा संबंधी प्रचार कार्य भी एक विशेष हिस्सा होना चाहिए। अब समय आ गया है कि कलीसिया के हर सदस्य को चिकित्सा संबंधी सेवाओं में हाथ पटाना चाहिए। कलीसियाओं के शुद्धिकरण और लोगों की शारीरिक तकलीफों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने स्वास्थ्य सुधार कार्य को सेवा कार्य का माध्यम बनाया है। लोगों को सिखाना कि वे प्रचार कार्य के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर प्रभु यीशु के सहायक बन जाएंगे। अपने प्रभु की सहायता से लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बचाएं, सुरक्षित रखें। इस काम के लिए परमेश्वर की सहायता अत्यंत आवश्यक है। लोग चंगाई पाने के बाद प्रभु की अन्य सत्य बातों को जानने के लिए हृदय के द्वार खोलते हैं। सभी के लिए काम करने की जगह है जो बड़ी समझदारी से इस काम को अपने हाथ में लेता है।
हमारे सामने बड़ा भयंकर समय है जिसमें हमें एक भी अविश्वास और निराशाजनक शब्द नहीं कहना है। आओ हम याद रखें कि हमारे पास ही वो सुसमाचार है जो इस जगत में पाप और दुख से भरी आत्माओं को सुनाना है, जिससे उन्हें छुटकारा मिल सके। ये काम यदि सही प्रकार किया गया तो अनेक बुरे व पापी लोगों को, जिन्हें कलीसिया ने नकार दिया है, बचाए जा सकेंगे। कई जो हमारे जैसे प्रभु में विश्वासी नहीं हैं किंतु प्रतीक्षा कर रहे हैं इस प्रकार की मद जो केवल मसीहियों को ही सौंपी गई है कि वे उनकी मद करें। यदि परमेश्वर के लोग अपने पड़ोसियों की सेवा करने में रुचि दिखाए तो कई आज की सच्चाई को जान पाएंगे। कोई भी नहीं जो उस कार्य को एक मूर्त रूप दे सके, जैसे कि लोगों की मद करना चाहे वे कहीं भी हों। आज हजारों लोग संदेश सुनकर खुशियां मना रहे होते यदि आज भी वे, जो परमेश्वर से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु का काम करते जैसे उसने इस पृथ्वी पर किया। जब चिकित्सा सेवा कार्य किया जाता है तब स्त्री व पुरुषों को प्रभु यीशु का सच्चा वचन बचाता है, चाहे उसमें पैसा और कठिन परिश्रम लगाया जाए, क्योंकि यही काम है जो वृद्धि करेगा। लोगों को ये दिखाने दो कि वे चिकित्सा सेवा कार्य में कितनी सक्रिय रुचि दिखाते हैं। उन्हें अपने आप को इस काम के योग्य बनाने के लिए किताबें पढ़ने दो जो उन तरीकों व उपायों से भरी हैं जो इस क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी हैं, और इनकी प्रशंसा भी करनी होगी जो अभी तक इन्हें मिली है। सभी लोगों की भलाई के लिए इन पुस्तकों में काफी कुछ लिखा गया है, वो सिद्धांत जो चिकित्सा के विशेष उद्देश्य को पूरा करते हैं। जो ये निर्देश पढ़ते व समझते हैं, उन्हें प्रयोग में लाते हैं, वे निश्चित ही आशीष पाते हैं, न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक आशीष भी। स्वस्थ रहने का दर्शन शास्त्र एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आज के संसार में बढ़ती बुराइयों से बचाता है। मुझे निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्यवर्धक सेवकाई एक खोज करेगी कि वे पुरुष जिन्होंने अपने आप को नीचे गिरने से बचा लिया और ऐसी सारी आदतें जो उन्हें उत्साहित करती और बुराई की ओर ले जाती, उन सभी आदतों से दूर हो गए हैं। अब वे सही परिश्रम करने के लिए अपनी सहमति देंगे, किंतु ऐसों को पहचानने व उत्साहित करने की जरूरत है। एक मजबूत, धैर्यपूर्ण, उत्साहपूर्ण प्रयास जरूरी होगा इन लोगों को ऊपर उठाने में। वे अपने आप को नहीं बचा सकते। शायद वे प्रभु यीशु की बुलाहट सुने भी, किंतु उनके कान उस बुलाहट का अर्थ समझने में नाकामयाब हैं। उनकी आंखें वे भली और अच्छी वस्तु ये देख नहीं सकती जो आगे उनके लिए रखी हुई हैं। वे पाप व बुराई में फंसे पड़े हैं। तब भी यदि इन्हें सुसमाचार के भोज से अलग न रखा जाए, उन्हें भी आमंत्रण प्राप्त करना है। आओ, यद्यपि वे अपने आप की इस योग्य न समझें, प्रभु कहता है उन्हें बरबस यहां ले आओ। उनका कोई बहाना मत सुनो, प्रेम और दया से उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। वे जो ये काम पत्रिकाएं बांटना करते हैं, उन्हें तैयारी करना है चिकित्सा सहायता कार्य करने के लिए। बीमार और पीड़ित लोगों को सहायता करना है। बहुत से लोग जिनके लिए ये दया का काम किया गया है, वे परमेश्वर का वचन सुनकर ग्रहण करेंगे। कौन है जो इस चिकित्सा सहायता कार्य को बड़ी समझदारी से अपने हाथों में ले रहा है? क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को इस कार्य की पूरी समझ होना चाहिए, तभी वह प्रभु यीशु की तरह ऊंचे स्तर पर वृद्धि करते हुए वे सच्चाई को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभु का काम आगे बढ़ाओ। चिकित्सा सहायता और शिक्षण कार्य दोनों साथ में उन्नति करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस काम को करने में हम में जो कमी है वो है आत्मीयता, समर्पण, बुद्धिमानी और योग्य कार्यकर्ता। उन्हें पूरे समाज में स्वास्थ्य सुधार के सिद्धांतों को जीवंत उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करना है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा भाग इन बातों से अनजान है। मुझे निर्देश दिया गया है कि उन स्वास्थ्य सुधार शिक्षकों को कहूं, आगे बढ़ो। इस जगत को तुम्हारे हर उस छोटी से छोटी सहायता की जरूरत है जो उनके नैतिक कष्टों की लहर को पीछे धकेल दे। उन्हें जो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को सिखाते हैं, वे अपनी सच्चाई पर डटे रहें। चिकित्सा विस्तार योजना।
परमेश्वर हमारे चिकित्सा कैंपों को, जिनके काम में पहले ही सहयोग प्रदान करने का अवसर प्रारंभ कर दिया है, कि वे प्रभु के साथ मिलकर नए स्थापित योजना को शुरू करें।
हर एक नई संस्था को सहयोगी साथी का दर्जा दिया जाकर तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को भेजने के काम में लाया जाए हैं। प्रभु ने हमारे चिकित्सालयों को एक नया काम करने का मौका दिया है, एक काम जो एक जीवन जो पत्थर के साथ कठोर है, जो बढ़ता जा रहा है, किसी अदृश्य हाथ के द्वारा लुढ़कता हुआ। इस गुप्त पत्थर की गति को रुकने दो। संस्थागत कार्य। स्वास्थ्य केंद्र एवं निदान केंद्र की स्थापना होना चाहिए। हमारे इस प्रयास में हमें समुद्र के किनारे के बड़े बड़े आश्रय स्थानों को सम्मिलित करना होगा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज जंगलों में गूंजती थी। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के संदेश वाहकों की आवाज बड़े पर्यटक केंद्रों और समुद्र किनारे के आश्रय गृहों में गूंजेगी। मुझे ऐसा दिखाया गया है कि कई शहरों में जितने भी खान पान गृह हैं, उन्हें सुधार गृह अथवा इलाज कक्ष से संबद्ध किया जाए। दोनों मिलकर सही आदर्शों को बनाए रखेंगे। इसी से संबंधित यह भी सलाह दी जाती है कि कुछ ऐसे स्थान हों जो बीमारों को ठहरने व उनकी देखभाल के लिए हों। ऐसे संस्थान बड़े बड़े स्वास्थ्य सुधार गृहों को, जो देश भर में फैले हैं, मद्दगार साबित होंगे। प्रभु ने हमारे शहरों के लिए भी संदेश दिया है, और ये संदेश हमें अपने जनसभागृहों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के द्वारा तथा प्रकाशनों के द्वारा सुनाया व बताया जाना चाहिए। इसी के साथ शहरों में स्वच्छ खान पान गृह भी स्थापित होना चाहिए, जिनके द्वारा संयम का संदेश सुनाया जाना चाहिए। स्वल्पाहार गृह बनाने के संबंध में सभाएं करने के लिए व्यवस्था की जाए। जहां भी संभव हो, एक कमरे की व्यवस्था की जाए जिसमें उनके संरक्षक बुलाए जा सकें कि वे स्वास्थ्य विज्ञान और मसीही स्वभाव के विषय पर व्याख्यान दे सकें। जहां वे अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाने के लिए निर्देश प्राप्त कर सकें और अन्य आवश्यक बातें भी जान सकें। जो भी हमारे स्वल्पाहार गृह में आएंगे, उन्हें पढ़ने के लिए पत्र पत्रिकाएं दिए जाएं। उनका ध्यान हमारे साहित्य पर, जिसमें संयम रखने एवं जीवन संजीवन तथा प्रभु यीशु के जीवन के पाठ व उदाहरण छोटी छोटी पत्र पत्रिकाओं के जरिए उन तक पहुंचाया जाए। इस पाठ्य सामग्री को पहुंचाने का काम भी हमें मिलकर करना होगा। जो भी आए, वे इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। कई लोग इसे नजरअंदाज करेंगे, किंतु कुछ उस रोशनी की खोज में होंगे कि वे पढ़कर स्वयं जानें और दूसरों को भी बताएं। मुझे यह निर्देश दिया गया कि बड़े बड़े नगरों के स्वच्छ खान पान गृह और सुधार गृह को स्थापित करने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इन साधनों से शहर के बड़े व धनी लोगों को तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के लिए बुलाए जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये भोजनालय पहले वाले सामान्य भोजनालयों से बिल्कुल भिन्न तरह से चलाए जाते हैं, बुद्धिमान लोग इस अंतर को देखकर पूछताछ जरूर करेंगे कि इस प्रकार के तरीके का कारण क्या है। तब उन्हें उस जांच से पता चलेगा वह मुख्य सिद्धांत जो उन्हें सबसे बढ़िया भोजन के परोसे जाने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार वे उस ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे जो वर्तमान समय का संदेश है। खाना बनाना सिखाने वाले स्कूल। मुझे निर्देशित किया गया है कि जहां कहीं भी चिकित्सा सहायता केंद्र में कार्य हो रहा है, वहां खाना बनाना सिखाने का स्कूल भी चालू किया जाए। हर प्रकार से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य उनके सामने लाना चाहिए, उन पर अधिक से अधिक रोशनी चमक सके। उन्हें हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए शिक्षित किया जाए, ताकि वे खाना तैयार कर सकें और दूसरों को भी सिखा सकें जो उन्होंने सीखा है। कुकिंग स्कूल चलाए जाएं, लोगों को पौष्टिक भोजन बनाना सिखाया जाए। उन्हें ये दिखाना होगा कि अब जरूरत है कि अस्वास्थ्यकर भोजन, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, फेंक दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि इस कारण से किसी को भूखे रहने की सलाह न दें। ये संभव है कि संपूर्ण पौष्टिक भोजन बिना चाय, कॉफी और मांसाहारी भोजन के हो। लोगों को ये सिखाना कि भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट कैसे बनाया जा सकता है, आज बहुत ही जरूरी है। समयानुसार संदेश।
मैं अपने सारे कलीसियों के सदस्यों, जो प्रभु के सच्चे सेवक, वे सब जो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करते, वे सब जो सब्बत को प्रभु के भवन में जाने से स्वयं को रोकते और जो यशाया के 58 अध्यायों के संदेश को नहीं मानते, उनसे कठोरता पूर्वक आग्रह नहीं कर सकती। एक काम जो सबके लाभ का है इस अध्याय में जोड़ दिया गया है, वो ये है कि परमेश्वर आज के समय में अपने लोगों से क्या करने को कहता है। ये वो कार्य है जो उसने खुद हमें सौंपा है। हमें संदेह में नहीं रखा गया है कि वो संदेश कहाँ के लिए है और ये कि ये कब पूरा होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं, वे लोग जो तेरे होंगे तेरे उस पुराने खंडहर को बनाएंगे, तू उन अनगिनत पीढ़ियों की नींव फिर से उठाएगा और तू उस दरार को मरम्मत करने वाला, मार्गों को तैयार करने वाला कहलाएगा कि वे उस पर चल सकें। परमेश्वर का स्मारक सातवां दिन सब्बत उसके जगत को बनाने के काम का चिन्ह उस पाप के मानव द्वारा बदल दिया गया है। परमेश्वर के लोगों को ये विशेष काम सौंपा गया है कि वे परमेश्वर के नियम में जो दरार आ गई है उसे मरम्मत कर सही करें। और जैसे जैसे हम जगत के अंत में पहुंच रहे हैं ये काम और भी जरूरी हो गया है। वे सभी जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे ये दिखाएंगे उसकी आज्ञा का पालन, सब्बत का पालन करते हुए जो उसकी आज्ञा है मान रखेंगे। वे उस मार्ग पर चलते हुए उसे प्रशस्त करते हैं। एक उचित चिकित्सा सहायता कार्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए किया जा सकता है, उनके बिना तो बिल्कुल नहीं। विशेषकर सब्बत इसी के लिए बताया गया है क्योंकि ये परमेश्वर के रचनात्मक कार्य का स्मारक है। इसका पालन किया जाना मनुष्य में प्रभु के नैतिक स्वरूप को वापस लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही प्रभु के लोगों की सेवा और प्रचार कार्य है जो आज के समय में आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है। ये सेवा यदि सही प्रकार की जाती है तो कलीसिया अत्यंत आशीषित होगी। जो घरेलू कार्यों में लगे रहते हैं वे हमेशा कार्य करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत काम है, किंतु इसलिए कि काम योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते कि समय की बचत हो। उनकी इस धीमी गति से जहां ज्यादा काम होना चाहिए वहां कम ही काम होता है, किंतु सबको इस देरी से काम करने की बुरी आदत छोड़ना होगा। उनको काम करने का एक उद्देश्य दें, ये निश्चित करें कि दिए गए काम को करने में कितना समय लगेगा और सारी ताकत उस काम को जल्दी से जल्दी करने में लगाओ। इस प्रकार काम करने की इच्छा शक्ति आपके हाथों को काम जल्दी पूरा करने में सक्षम ठहराएगी। ख्रीष्ट यीशु का काम पूर्ण आज्ञा पालन की मांग करता है। प्रभु चाहता है कि उसके सेवकों में आत्माओं के महत्व को महसूस करने की समझ होना चाहिए। काम को जल्दी पूरा करने की इच्छा, परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया उत्तरदायित्व निभाने का जज्बा हो। मेहनत कशी व परिश्रम धर्म का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त कर्तव्य को पूरा करने में उपयोगी है। मनुष्य को परिस्थितियों पर काबू पाने और परमेश्वर ही इच्छा को पूरी करने के लिए उसके हाथ का काम करना चाहिए। उचित व निर्णायक कार्य जो सही समय पर किए जाएं, वे सफलता की चरम सीमा पर पहुंचेंगे, जबकि देरी से व लापरवाही से किए गए कार्य न केवल असफलता को दर्शाएंगे और परमेश्वर की आज्ञा बल्कि परमेश्वर का अपमान करेंगे। उच्च स्तर बरकरार रखना। अनेक लोग परमेश्वर का काम करने योग्य कुशल हैं किंतु काम कम करते हैं, क्योंकि परिश्रम व प्रयास ही नहीं करते। हजारों जीवन जीते और मर जाते हैं जिन्हें जीवन का मकसद पता ही नहीं होता। जीवन का काम उन्हें किस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है पता ही नहीं होता। इसका एक कारण है कि वे अपनी स्वयं की महत्ता कम आंकते हैं। प्रभु यीशु ने हम में से हर एक के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और जो कीमत चुकाई गई है उसके एवज में वो चाहता है कि हम अपने जीवन का महत्व समझें। पृथ्वी पर के अपने जीवन में प्रभु यीशु एक ईमानदार व जीवन भर अपने काम में संलग्न रहें, दिन रात काम में लगे रहें। उन्होंने ज्यादा परिश्रम किया क्योंकि वे सर्वोच्च परिणाम चाहते थे। जो परमेश्वर के काम में जुटे हुए हैं उन्हें एक ऐसे अनुभव कि जो ऊंचा, गहरा और इतना चौड़ा हो जिसके समान अब न किसी ने न सोचा और पाया। अभी भी अनेक जो परमेश्वर के एक बड़े परिवार के सदस्य हैं कम जानते हैं कि प्रभु की महिमा करना क्या होता है, और ना ही यह जानते कि महिमा से महिमा में बदलना क्या है। बहुतों के पास प्रभु यीशु की समझ की हल्की सी रोशनी है और उससे ही उनके जीवन खुशी से उछल पड़ते हैं, और वे चाहते हैं कि जल्दी ही उद्धारकर्ता के प्रेम को अधिक गहराई और परिपूर्णता से प्राप्त कर सकें।
काश कि इन सब की ये इच्छाएं परमेश्वर में पूरी हो जाएं। हमारे उपदेशक, चिकित्सक, शिक्षक और वे सब अन्य जो प्रभु के सेवक होने का काम करते हैं, उनके लिए मेरे पास एक संदेश है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक अपना स्तर ऊंचा करे, पवित्रता का एक ऊंचा स्तर। तुम्हें एक ऐसा अनुभव प्राप्त करना चाहिए जो शायद अभी तक तुमने पाने के बारे में सोचा ही नहीं होगा। अनेक जन परमेश्वर के इतने महान व बड़े परिवार के सदस्य हैं, फिर भी यह जानते ही नहीं कि प्रभु की महिमा पाना क्या है और महिमा से महिमा में बदलना क्या है। और तुम में से कुछ लोगों को प्रभु की अद्भुत ज्योति का आभास भी हो चुका है, जिससे उनकी आत्मा आनंद से झूम उठती है। तुम प्रभु के संपूर्ण गहरे और अद्भुत प्रेम को पाने के लिए उत्साही हो। तुम असंतुष्ट जरूर हो, किंतु निराश न हो। प्रभु यीशु को अपने हृदय से संपूर्ण प्रेम और पवित्र स्नेह दो। प्रभु की ज्योति की हर एक किरण को संभाल कर रखो। परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि रखो और अपनी इच्छा बाद में। अपने आप को धार्मिक विचारों और पवित्र वचनों से परिपूर्ण करो। वह तुम्हें सुबह की पहली किरण, जो उसकी महिमा बिखेरती है, उससे देखता है। जैसे जैसे तुम प्रभु को जानने लगते हो, तुम्हें पता चलता है कि वह तुम्हारे आगे आगे चलता है। एक धर्मी का मार्ग भोर की रोशनी की तरह है, जो दिन का पूरा उजाला होने तक चमकती है। अपने पापों की क्षमा मांगने के बाद, पछताने के बाद और क्षमा प्राप्त कर लेने के बाद, हमें प्रभु यीशु के बारे में जानना जारी रखना है, जब तक कि हम दिन दोपहरी तक संपूर्ण सुसमाचार के विश्वासी न हो लें। दूरदर्शिता और पूर्व विचार। जब नहेम्याह को प्रभु की सहायता की जरूरत थी, तब उसने स्वयं प्रार्थना नहीं की, ये सोचकर कि उसे किसी बात की चिंता या जिम्मेदारी नहीं है कि वह यरूशलेम को बचाने के उद्देश्य को पूरा करे। बड़ी दूरदर्शिता और पूर्व विचार के साथ वह आगे बढ़ा कि इस सारी योजना की सफलता के लिए पूरी व्यवस्था की और हर काम को बड़ी सावधानी से पूरा किया जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया था। नहेम्याह जैसे इस पवित्र व्यक्ति का उदाहरण परमेश्वर के सभी लोगों के लिए एक पाठ होना चाहिए कि उन्हें केवल प्रार्थना में ही विश्वास नहीं रखना है, बल्कि पूरी तन्मयता से काम में जुट जाना चाहिए। हम कितनी कठिनाइयों का सामना करते और कई बार अपने आप को काम करने से रोक लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूरदर्शिता और पूर्व सोच विचार और तकलीफें सहना आदि धार्मिक कार्यों को करने से संबंध नहीं रखते। ये सबसे बड़ी गलती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हर तरह का परिश्रम और ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम प्रभु के योग्य कार्यकर्ता ठहरें। सावधानी पूर्वक सारी बातों का ध्यान रखना तथा पूरी तरह पक्की योजनाबद्ध तरीके से काम करना, जितना जरूरी नहेम्याह के समय में था, आज भी इस बड़े काम को करने के लिए और सफलता पाने के लिए जरूरी है। निराशाजनक स्थिति का सामना कैसे करें? परमेश्वर के दासों को हर प्रकार की निराशा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें परखा जाएगा, न केवल लोगों को गुस्सा, घृणा, दुश्मनों का अत्याचार से, बल्कि आलस्य, विरोध, गुनगुनापन तथा मित्रों व साथियों का कटाक्ष। यहां तक कि कुछ लोग तो परमेश्वर के काम को बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाने के बदले उनकी कही सुनी बातों पर विश्वास करते और अपने आप पर गर्व करते हैं, लोगों की चुगली करना और रास्ते में रुकावटें खड़ी करना आदि। नहेम्याह ने ऐसी स्थिति में केवल परमेश्वर पर भरोसा किया, क्योंकि वही हमारा रक्षक है। यदि हम याद रखें कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया था, तो हम हर खतरे का सामना कर सकेंगे।
वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, उसे हमारे लिए दे दिया, वो क्यों हमें उसके साथ वो सब कुछ सेंतमेंत नहीं देगा जिसकी हमें जरूरत है? और जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? भले ही शैतान और उसकी सेना बड़ी चतुराई से रहस्यमय षड्यंत्र क्यों न रच ले, परमेश्वर उसे जान लेगा और उसे और उसकी सेना को नाकाम कर देगा। वे जो इस संघर्ष का सामना डटकर कर रहे हैं, वे पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशेष काम को करने के लिए उत्साहित किए गए हैं। जल्दी ही उस प्रतिक्रिया को महसूस करेंगे जब उन पर से दबाव कम हो जाएगा। निराशा शायद उनके सबसे दृढ़ विश्वास को लड़खड़ा दे और उनकी मजबूत इच्छा को कमजोर बना दे, किंतु परमेश्वर जानता है और फिर भी हम पर दया दिखाता और प्रेम करता है। वो हमारे इरादे जानता और हृदय के उद्देश्यों को भी जानता है। धीरज धरना, अंधकार व निराशा में भी प्रभु पर भरोसा रखना, वे पाठ हैं जो परमेश्वर का काम करने वालों को सीखने की जरूरत है। मुसीबत के समय में परमेश्वर उनको निराश नहीं होने देगा। दिखने में कोई वस्तु निराशाजनक दिखाई दे सकती है, फिर भी वो अजय होती है। उस आत्मा से जो अपने आप को शून्य कर पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर पर निर्भर रहता है, वही विजयी होता है। प्रभु उन सिपाहियों को बुलाता है जो न तो निराश होंगे और न असफल होंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना स्वीकार करेंगे। वो चाहता है कि हम सब के सब मसीह की लीक पर चलें। आज जो उस बिन बताए सत्य का प्रचार करते हैं, उन्हें हतोत्साह होने की जरूरत नहीं। यदि वे समय समय पर लोगों से आत्मीयता का व्यवहार नहीं पाते, जबकि वे अपने आप को मसीही कहते हैं, क्योंकि पौलुस और उसके साथी कार्यकर्ताओं ने भी उन लोगों से वैसा ही व्यवहार पाया था जिसके लिए उन्होंने परिश्रम किया था। क्रूस की कथा सुनाने वालों को अपने आप को सतर्कता और प्रार्थना के कवच से तैयार कर लेना चाहिए, और तब हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना और प्रभु यीशु के नाम का प्रसार करना चाहिए। कोमलता, वो आत्मा जो शुरू से कोमल स्वभाव की है, वो जागृति के लिए और अधिक प्रभावी तरीके से सच्चाई के पक्ष में कोई भी बात कहेगी, चाहे वहां कितनी भी दबावपूर्ण स्थिति हो। जिस प्रकार सुबह की ओस अभी भी उन सूखे मुरझाए पौधों पर पड़ती है, वैसे ही प्रभु का वचन बड़ी कोमलता से उन आत्माओं पर पड़ने दो जब उन मनुष्यों को ढूंढते हों जो बुराई में है। परमेश्वर की योजना है कि पहले लोगों के हृदय तक पहुंचा जाए। हमें सच्चाई को बड़े प्रेम से बताना है, प्रभु में विश्वास रखकर कि हमें जीवनों को बदलने की शक्ति वही देगा। प्रेम से कहा गया सत्य वचन पवित्र आत्मा द्वारा काम करेगा। एक कोमल मन, उदार मन को जीतने वाला काम गुनाहगारों को बचा सकता है और हजारों लोगों के पाप को छिपा सकता है। तुम्हारे अपने चरित्र द्वारा दर्शाया गया प्रभु यीशु मसीह का चरित्र तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को बदल देने की शक्ति रखता है। प्रभु यीशु को प्रतिदिन अपने कार्यों में प्रतिबिंबित करो और वो तुम में अपने जीवित वचन को कार्य रूप में दर्शाएगा। एक उदार परमेश्वर का अनुसरण करने वाला किंतु एक ताकतवर प्रभाव दूसरे लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता में फिर से बनाएगा। निष्पक्षता, प्रभु यीशु उद्धारकर्ता, जब तक हमारे बीच रहा उसने गरीबों के साथ सब कुछ बांटा। उसने उनकी जरूरतों को व कठिनाइयों का स्वयं अनुभव किया था, तभी वो उसके काम करने वालों को शांति और उत्साह प्रदान करता था। वे जिन्होंने प्रभु को सही अर्थों में जाना और उसकी शिक्षाओं को समझा था, वे कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि लोगों के बीच में भेदभाव किया जाए या धनी लोगों को गरीबों से अधिक सम्मान दे। जब तुम उन लोगों को देखते हो जो उतने आकर्षक और अच्छे नहीं दिखाई देते, तब क्या तुम ये महसूस करते हो कि उन आत्माओं को तुम नकार रहे हो जिन्हें प्रभु यीशु खोज रहा है? ठीक उसी समय जब तुम उन्हें ठुकराते हो, उन्हें तुम्हारी सहानुभूति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रार्थना सभा में हर एक व्यक्ति शांति और आराम चाहता है, चाहे वे एक लापरवाही का जीवन जी रहे हों, किंतु फिर भी पवित्र आत्मा के प्रभाव से अनजान नहीं होते। उनमें से कई प्रभु के लिए जीते जा सकते हैं। सुसमाचार पाने का काम संकीर्ण नहीं होना चाहिए और न ही केवल कुछ चुने हुए के लिए हों, जिन्हें शायद हम समझते हैं कि वे इसका श्रेय हमें प्रदान करेंगे यदि वे प्रभु को स्वीकार करते हैं, बल्कि संदेश तो हर एक को सुनाया जाना है। जहां कहीं भी लोगों के हृदय सत्य वचन को सुनने के लिए खुले हों, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं उन्हें सलाह देने, निर्देश देने को तैयार है। ईमानदारी, भरोसा, कार्यशीलता, जब किसी पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तब ये नहीं पूछा जाता कि वो व्यक्ति धनी या प्रसिद्ध है, किंतु ये कि वो कितना ईमानदार, भरोसेमंद और परिश्रमी है, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए इन योग्यताओं के बिना वो व्यक्ति पूरी तरह अयोग्य और भरोसा किए जाने की स्थिति में नहीं है। निस्वार्थता, हमें प्रभु यीशु के काम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लेना चाहिए। वो लगातार भलाई के काम करता चला गया, मंदिर में, आराधनालयों, नगरों की सड़कों, बाजारों और अन्य कार्य क्षेत्रों, सागर के किनारे पहाड़ों के बीच उसने सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को चंगा किया। उसका जीवन एक निस्वार्थ सेवा का जीवन था और वही हमारे लिए सीखने का पाठ होना चाहिए। उसका नम्र दया से पूर्ण प्रेम हमारे स्वार्थी होने और हृदय की कठोरता को दूर कर देता है। वो प्रेरणा जो प्रभु के काम को करने के लिए उकसाती है, वो किसी भी प्रकार स्वार्थ सेवा से जुड़ी नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भक्ति और बलिदान की आत्मा हमेशा से स्वीकार योग्य सेवा होती है और हमेशा पहली जरूरत मानी जाएगी। हमारे प्रभु और गुरु चाहता है कि स्वार्थी होने का एक भी धागा परमेश्वर की सेवकाई के काम में न बुना हो। हमारे प्रयासों में हमें योजना प्रवीणता, परिपूर्णता और बुद्धिमानी से काम लेना होगा, जो परमेश्वर पृथ्वी पर बनने वाले परमेश्वर के भवन के बनाने वालों में परिपूर्णता चाहता है। फिर भी हमारे सारे परिश्रम में हमें ये याद रखना है कि सर्वोच्च गुण या सबसे अच्छी सेवा तभी स्वीकार योग्य होगी जब स्वयं पर भरोसा या स्वार्थ परमेश्वर की वेदी पर न लाए जाएं, एक जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में। दुनिया के सभी लोगों में बदलाव लाने वाले लोगों को निस्वार्थी, सबसे अधिक दयालु, सबसे नम्र होना चाहिए। उनके जीवन में सच्चे निस्वार्थ भाव से किए गए काम दिखाई देने चाहिए। चिंता करना छोड़ दो। बात तब बिगड़ती है जब काम करने वाले पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित नहीं होते। शायद आप ऐसे समयों पर आंसू बहा सकते हों, किंतु चिंता मत करो, क्योंकि आशीषित गुरु अपना काम शुरू से लेकर अंत तक अपनी देखरेख में पूरा करता है। वो केवल ये चाहता है कि सेवकों को उसके पास आना चाहिए ताकि उससे आदेश पा सकें, उसके निर्देशों का पालन करें। सब कुछ हमारी कलीसियाएं, मिशन्स, सब्बत स्कूल, हमारी संस्थाएं, सबके लिए उसके हृदय में स्थान है। चिंता क्यों करें? कलीसिया को एक जीवित व चमकती हुई रोशनी के रूप में देखने की एक तीव्र इच्छा, जो परमेश्वर ने खुद तैयार की है, उसे पूरी तरह परमेश्वर पर पूरा भरोसा एवं मन की स्थिरता से किया जाना चाहिए। अपने आप में स्थिरता को बढ़ाना और अपनी आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में रखना चाहिए, जो हमारा भरोसेमंद रचयिता है। वो उसकी रक्षा करेगा जो उसके भरोसे सौंपा गया है। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी वेदी हमारे आंसुओं और शिकायतों से भरी हो। तुम्हें प्रभु ने पहले से ही पर्याप्त आशीषें दी हैं, जिनके लिए तुम्हें उसकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि तुम किसी अन्य व्यक्ति का जीवन बदलते नहीं देखते, किंतु भले और अच्छे काम तो होते रहेंगे यदि तुम लगातार आगे बढ़ते रहो। और केवल अपनी ही इच्छा या विचारों को पूरा न करो, प्रभु की शांति तुम्हारे हृदयों को कायल करे। तुम उसके प्रति धन्यवादी हो, प्रभु को अपने जीवन में काम करने दो। उसको अपने जीवन में आने से मत रोको। वो काम कर सकता और अवश्य करेगा यदि हम उसे अपने हृदय में जगह दें। परमेश्वर का चरित्र दर्शाना। परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल अलग अलग तरह से कर सकता है। वो अपना आत्मा उसके जीवन में डाल सकता है। वो काम जो परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाएगा, वही उसे ग्रहण योग्य होगा। उसे शिष्यों को उसके गुणों को, उसके स्वरूप को लोगों को दिखाना है। कभी न मिटने वाला स्वरूप, जिसमें अनंत सिद्धांत शामिल है। यीशु ख्रीस्ट का नाम उनके लिए सांकेतिक शब्द था, उनकी अलग पहचान का चिन्ह, उनकी एकता का सूत्र, उनके काम करने का अधिकार और उनकी सफलता का माध्यम। उसके राज्य में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें प्रभु यीशु का नाम और उसका चिन्ह न हो। ब्योरा रखने वाला लेखाकार। उसके सच्चे व विश्वास योग्य लेखाकार बनो, जो अपने जीवन में उसकी प्रशंसा कर सकें, जिसने तुम्हें अंधकार से उसकी अद्भुत ज्योति में लाया है। प्रभु के दासों को ब्योरा रखने वाले होना चाहिए, जो तुरंत उनकी विधि से खुले द्वारों तक पहुंचने के लिए तैयार हों, क्योंकि जरा सी देर भी शैतान को अपना काम करने के लिए काफी है उन्हें असफल करने के लिए। उसकी आज्ञा को मानने वाले लोगों को तैयारी से खड़े रहना है, हर समय तैनात रहना है सेवा करने के लिए। वे जो वास्तव में प्रभु यीशु के प्रतिनिधि हैं, वे लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वे चाहे घर हों या बाहर, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने से प्रसन्न होते हैं।
वे यहां वहां प्रार्थना सभाओं में सुने व देखे जा सकते हैं। वे धर्म उपदेशक के काम को करने का प्रयास करते जिसका परिश्रम वो स्वयं नहीं कर सकते। वे अपना नाम ऊंचा करना या अपनी प्रशंसा पाने का काम नहीं करते, किंतु वे नम्रता, दीनता, विश्वास योग्य छोटे व बड़े सब प्रकार के काम करते, क्योंकि मसीह ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। बहादुर और सच्चे। इन भयानक दिनों में कलीसिया को जिसकी जरूरत है वह है एक सेना, कामगारों की सेना, जैसे पौलुस ने उन्हें शिक्षित किया ताकि वे प्रभु के काम के योग्य ठहरें, जो प्रभु की बातों में गहरा अनुभव रखते हैं और जोश और उत्साह से भरे हैं, पवित्र किए हुए और स्वार्थ का त्याग करने वाले। पुरुषों की जरूरत है, पुरुष जो कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे और अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, जो बहादुर और सच्चे हैं, जिनके हृदय में प्रभु येशु ने महिमा की आशा रची है और जिनके होठों को पवित्र आग से छू दिया है। वे ही वचन का प्रचार करेंगे, क्योंकि ऐसे काम करने वालों के कंधों पर परमेश्वर का काम निर्भर है। इनमें खतरनाक गलतियां भी होती जो खतरनाक जहर के समान है, जो मनुष्यों की नैतिकता को धूमिल करती और मानव जाति को दी गई आशा को मिटाने का काम करती है। युद्ध एवं संघर्षों के बीच, विरोधों के बीच, भयभीत करने वाले हानि तथा मानवीय तकलीफों के बीच आत्माओं को बचाने का काम आगे बढ़ाना है। किसी एक युद्ध में किसी एक रेजिमेंट के हमलावरों को शत्रु सेना के द्वारा पीछे धकेल दिया गया, तब ध्वजावाहक अपनी ही जगह पर खड़ा रहा जबकि सारी सेना वहां से कूच कर गई। तब सेनापति ने चिल्लाकर उसे ध्वजा को वापस लाने को कहा, किंतु उस ध्वजावाहक का जवाब था, सैनिकों को झंडे के पास लाओ। ये ही वह काम है जो आज हर एक वफादार को प्रभु के झंडे को ऊंचा उठाने में करना है। सब लोगों को मसीह के झंडे के तले इकट्ठा करना है। प्रभु यह काम पूरे दिल से चाहता है। हम जानते हैं कि अनेक दिखावा करने वाले जो केवल मसीह तो कहलाते हैं पर उनमें हिम्मत व जोश की कमी है, जिसके कारण वे न तो स्वयं प्रभु के उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं और न ही उनसे जुड़े अन्य लोगों को प्रभु के पास लाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को उपयोग में नहीं लाता जो ऐसे कठिन समय में, जब सब लोगों को हिम्मत रखने की शक्ति और प्रभावशाली होने की जरूरत है, किंतु वे सही बातों के लिए दृढ़ खड़े रहने से डरते हैं। वह ऐसे लोगों को बुलाता है जो गलत बातों के विरुद्ध बड़ी ईमानदारी से लड़ेंगे, सांसारिक ताकतों व राज्यों के विरुद्ध, इस संसार के अंधकार की ताकतों के विरुद्ध, आत्मिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने को ऊंचे स्थानों पर खड़े होंगे। और फिर वह ये शब्द कहेगा, शाब्बास मेरे भले और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर एलिया, नातान, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे पुरुषों को बुलाना चाहता है जो उसके संदेश को बड़ी वफादारी से लोगों तक पहुंचाएं, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। पुरुष जो सत्य को बहादुरी से प्रचार कर सकें, यद्यपि इसके लिए उन्हें अपना सब कुछ त्याग करना पड़ सकता है। एक चरवाहे की तरह देखभाल।
वो चरवाहा जो अपनी एक भेड़, एक खोई हुई भेड़ को भी ढूंढ निकालता है, अपनी बाकी भेड़ों को जो घर में सुरक्षित हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करता और कहता है, मेरे पास 99 भेड़े तो हैं और उस खोई हुई को ढूंढने में मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसे खुद ही वापस आ जाने दो और मैं भेड़ द्वार उसके लिए खुला छोड़ दूंगा ताकि वो अंदर आ सके। नहीं, परंतु जैसे ही भेड़ खो जाती है चरवाहा दुखी और परेशान हो जाता है। वो अपनी भेड़ों को बार बार गिनता और जब पाता है कि एक कम है तो वो देरी नहीं करता। वो कुल 99 भेड़ों को सुरक्षित स्थान में रखकर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। अंधेरी और बहुत ही खतरों से भरी रात में, अनजान व खतरनाक रास्तों से होता हुआ वो चरवाहा जो ज्यादा चिंतित है और उससे अधिक उसकी खोज, वो हर संभव प्रयास करता है कि उसकी खोई हुई भेड़ उसे मिल जाए। और जब वो दूर से उसकी पहली हल्की सी आवाज सुनता तो कितना खुश हो जाता है। वो बड़ी खतरनाक ढलान वाली ऊंचाई पर चढ़ जाता और उस खाई के किनारे तक पहुंच जाता है जहां उसकी स्वयं की जान को खतरा है, तब भी वो उसे ढूंढ लेता है। जबकि उस भेड़ की आवाज वो धीनी आवाज बताती है कि वो मरने पर है, किंतु आखिरकार चरवाहे की मेहनत रंग लाती है, उस खोई हुई भेड़ को वो पा लेता है।
तब वो उसे डांटता भी नहीं कि उसके कारण उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। न वो उसे छड़ी से मारता, वो उसे घर तक चलने नहीं देता, किंतु खुशी के मारे उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। यदि उसे कहीं चोट या खरोंच आई तो वो उसे अपनी बाहों में बड़े प्रेम से उठाता व गले से लगाता है, ताकि उसके हृदय की गर्मी उसे नया जीवन दे सके। वो धन्यवादी होता है कि उसका परिश्रम, उसकी खोज व्यर्थ नहीं गई। वो उसे उठाकर भेड़शाला में रखता है। दीनता। स्त्री व पुरुषों को अपनी सेवकाई के काम के लिए चुनने के लिए परमेश्वर ये नहीं पूछता कि क्या वे पढ़ना जानते हैं, क्या वे इस काम को कुशलतापूर्वक कर सकेंगे, क्या उनके पास धन संपत्ति है। वो पूछता है क्या वे नम्र व दीन हैं कि मैं उन्हें अपना काम करने के तरीके सिखा सकूं, क्या मैं अपने शब्द उनके होठों में डाल सकता हूं कि जो मैं उन्हें बोलने को कहूं वे वही कहें, क्या वे मेरे प्रतिनिधि होंगे। गरीब, घृणित और त्यागे हुए लोगों की मद करने की कोशिश अपनी प्रतिष्ठा की सीढ़ी पर चढ़कर या सर्वोच्च स्थान पर बैठकर नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तरह तुम्हें कुछ भी प्राप्त न होगा। वो जो हमारी कलीसिया की ताकतवर और सफल बना सकता है, वो जल्दबाजी व शोर शराबा नहीं, बल्कि शांति से किया गया उदार कार्य। कोई लोगों की परेड या जोर शोर से की गई सभाएं नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक, प्रार्थना से पूर्ण, बिना रुके किए गए प्रयास हैं। हार के कारण मिलने वाला तिरस्कार कभी कभी आशीष सिद्ध होता है, जो हमारी असमर्थता को दर्शाता है कि परमेश्वर की सहायता के बिना उसकी इच्छा पूरी करना असंभव है। उदार व नम्र लोग चाहे छोटे छोटे घरों में रहते पर गुणों से भरपूर है। उनकी जरूरत है कि वे घर घर जाकर प्रभु का प्रचार करें, क्योंकि वे कहीं अधिक बेहतर काम पूरा कर सकते हैं। अद्भुत दानों से भरपूर लोगों की अपेक्षा। संपूर्ण स्वर्ग इस काम के बारे में उत्साहित व रुचि दिखा रहा है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के संदेशवाहक यीशु मसीह नासरी के नाम से जगत में संदेश फैला रहे हैं। ये एक महान कार्य है। इसलिए हे बहनों और भाइयों, अपने आप की प्रतिदिन प्रभु के सिंहासन के सम्मुख नम्र व दीन करो। ये न सोचो कि हमारी बुद्धि परिपूर्ण है, हमें ये काम बड़ी चाह से करना चाहिए। हमें परमेश्वर से हमको नम्र बनाने की प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमें नम्र बनाना शुरू करता है तो उसका तरीका हमें पसंद नहीं आता, किंतु हमें हमारे परमेश्वर के ताकतवर हाथों में रहकर दिन प्रतिदिन नम्र बनना चाहिए। हमें अपने उद्धार के लिए डरते और कांपते हुए काम करना है। जब परमेश्वर हमारे साथ हमारे काम में मद करता है कि उसकी इच्छा अनुसार काम करें और उसे प्रसन्न करें, हमें उसके साथ सहयोग करना है। जबकि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है, हमें उस सीधे मार्ग से प्रवेश करने की लालसा होनी चाहिए, किंतु यह फाटक के कब्जे ढीले नहीं जो उसे झूलने देंगे। यह फाटक संदेह करने वालों को प्रवेश न देगा। अब हमें अनंत जीवन पाने के लिए पुरजोर कोशिश करना है, अर्थात जितना कीमती इनाम है उतना ही कठिन परिश्रम। ये न पैसे से, न जमीन, पद प्रतिष्ठा से पाया जा सकता है, किंतु केवल मसीह के जैसा चरित्र यदि आप में है तो ही स्वर्ग के फाटक हमारे लिए खोले जाएंगे। ये कोई प्रतिष्ठा बुद्धि की बढ़ती से नहीं जो हम अमरता के ताज को पालेंगे। केवल नम्र, उदार एवं छोटे लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपना सब कुछ माना, वे ही ये उपहार पाएंगे। जब तुम कोई सेवकाई का काम करके लौटे हो तो अपनी प्रशंसा मत करो, परंतु प्रभु यीशु की महिमा करो। कलवरी के क्रूस को ऊंचा उठाओ। सम्मान के पहले अपमान है। मनुष्यों के सामने किसी ऊंचे पद के लिए परमेश्वर उसे चुनता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान हो, जो प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़ा होता है। अधिकतर बच्चों की तरह होना शिष्यों के लिए मुख्य योग्यता होगी कि वे परमेश्वर का काम करें। स्वर्गीय शक्तियां उसका सहयोग करेंगी जो आत्माओं को खोजने में अपना सब कुछ समर्पित करता है, स्वयं को महान नहीं बनाता और आत्माओं को बचाता है। संयमी। क्या परमेश्वर का हरेक बेटा इस बात से कायल होगा कि उसे किस प्रकार खाने पीने, वस्त्र पहनने, काम करने में संयम रखने की जरूरत है कि वह प्रभु का काम बेहतरीन तरीके से कर सके? जब प्रभु के कार्यकर्ता काम करने के दबाव और चिंता में घिरे रहते हैं और इस तरह शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाते हैं, तब उन्हें काम से हटकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। केवल स्वयं के ही बारे में न सोचकर, अपने ही सुख के लिए नहीं, बल्कि आगे और अच्छी तरह काम करने के लिए। हमारे आसपास एक और सतर्क और चौकन्ना शत्रु है, जो हमारे रास्ते में हमेशा आता है और जहां हमें थोड़ा सा भी कमजोर पाता है, तुरंत फायदा उठाता है, ताकि हमें उसकी परीक्षाओं में डालकर बुराई करने पर मजबूर कर दें। और जब भी हमारा शरीर व मस्तिष्क काम करके थक जाते हैं, तो वो इसका फायदा उठाकर हमारे लिए परीक्षाएं लाता है, ताकि प्रभु के बेटे और बेटी परीक्षाओं में पड़कर पाप में गिरें, जो वो चाहता है। अतः परमेश्वर में परिश्रम करने वालों, प्रभु की ताकत को संभाल कर रखो और इस्तेमाल करो, और जब भी काम से थक जाते तो आराम करो और फिर से प्रभु यीशु से ताकत प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। हमारी शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग हमारे जीवन को प्रभु की महिमा के लिए उपयोग में लाने के समय को कम कर देती है, साथ ही हमें अयोग्य बना देती है प्रभु का वो काम करने के लिए जो हमें पूरा करने के लिए सौंपा गया है। अपने आप को गलत आदतों का शिकार बनाना, देर रात तक जागना, अनाप शनाप खाना, जो तुम्हारी ताकत व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इन सब कारणों से हम अपने आप को कमजोर बनाते हैं। शारीरिक व्यायाम न कर, शरीर व दिमाग को ज्यादा थकाकर हम अपनी नाड़ी स्पंदन क्रिया को असंतुलित करते हैं। जो इस प्रकार अपने जीवन को छोटा करते, वे प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर काम करने के लिए अपने आप को अयोग्य बना लेते हैं। वे प्रभु के विरुद्ध चोरी करने के अपराधी ठहरते हैं और साथ ही अपने अन्य साथियों को भी ठगते हैं। जो अवसर उन्हें दूसरों को आशीषित करने का मिलता है, जिसको करने के लिए प्रभु ने तुम्हें इस जगत में भेजा है, उनके खुद के कारण काम कम हुआ है। उन्होंने अपने आप को इतना कमजोर व अयोग्य ठहराया कि एक छोटा सा काम जो कम समय में किया जा सकता था, नहीं किया जा सका। प्रभु हमें दोषी ठहराता है जब हमारी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतें हमें जगत की भलाई का काम करने से रोक देती हैं। हमारा परमेश्वर हमेशा करुणा करने वाला, सांत्वना देने और सभी बातों में न्याय योग्य परमेश्वर है। वो नहीं चाहता हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे स्वास्थ्य की हानि हो या हमारी सोचने समझने की शक्ति कम करें। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी दबाव में आकर या मस्तिष्क पर जोर देने वाला काम करें, जिससे कि थक जाएं और हमारे नाड़ी स्पंदन पर असर पड़ें। परमेश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है और इसीलिए चाहता है कि हम हर काम सोच समझ कर करें तथा जीवन के नियमों का ध्यान रखते हुए करें। जो उसने हमारे अंदर सृजे हैं, उनका पालन करते हुए हम कामों को करने के साथ अपने जीवन को भी भली भांति चला सकते हैं
और दोनों को संगठित कर सकते हैं। एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है और हर दिन नए नए काम और जिम्मेदारियां लाता है, किंतु कल का काम आज पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। वे कार्यकर्ता जो परमेश्वर का काम करते हैं, उन्हें महसूस करना चाहिए कि ये काम कितना पवित्र है और उन्हें इसी के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि कल किए जाने वाले काम के साथ पूरा इंसाफ हो, उसे उतनी ही पवित्रता और ईमानदारी से पूरी सामर्थ्य से किया जा सके। आराम और प्रभाव। प्रभु यीशु के शिष्यों को शिक्षित होने की आवश्यकता है कि कब काम करें और कब व कैसे आराम करें। आज जरूरत है कि प्रभु के चुने हुए लोग उसके काम को करने में प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम पर निकल जाएं और कुछ समय आराम भी करें। कई कीमती जीवन बलिदान हो गए हैं जिनको बलिदान नहीं होना था, क्योंकि वे इस आज्ञा से अनजान थे। यद्यपि कि फसल अधिक है और मजदूर कम है, फिर भी स्वास्थ्य और जीवन का बलिदान कर कुछ नहीं मिलता। ऐसे कई कमजोर थके हारे कार्यकर्ता हैं जो बड़े निराश होते हैं जब वे देखते हैं कि कितना काम बाकी है और अभी तक बहुत कम काम हुआ है। किस प्रकार वे चाहते हैं कि उन्हें शारीरिक ताकत प्राप्त हो और वे और काम कर सकें, किंतु ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु कहता है,
तुम सब जो थके हुए हो मेरे पास आओ और आराम पाओ। मसीही जीवन लगातार काम करने से नहीं बना है, ना ही लगातार प्रार्थना करने से बना है। एक मसीही को ईमानदारी से खोई हुई आत्माओं को उद्धारकर्ता के पास उद्धार पाने के लिए लाना है, ताकि वे भी अपना समय प्रार्थना करने और बाइबल का अध्ययन करने में लगाएं। लगातार काम की धुन में लगे रहना या चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से व्यक्तिगत धार्मिकता, स्वास्थ्य आदि को नकार दिया जाता है, जिससे शारीरिक व मानसिक नुकसान होता है। वे सब जो प्रभु के अधीन काम करने का प्रशिक्षण ले रहे और सीख रहे हैं, उन्हें कुछ समय शांति से अपने आप से मनन करने, प्रकृति के साथ तथा परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। उनमें एक ऐसा जीवन दिखाई देना चाहिए जो संसार का नहीं, ना ही इसके रीति रिवाज व नियमों का पालन करने वाला हो, और उन्हें जरूरत है कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा को जानें और ज्ञान प्राप्त करें। हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु के द्वारा हमारे हृदय से की गई बात को सुनना चाहिए। जब कई अन्य आवाजें होती हैं किंतु हम प्रभु की आवाज सुनने को आतुर होते हैं, तब हमारी नितांत शांति प्रभु परमेश्वर की आवाज साफ सुनाने में मदद करती है। वह कहता है, शांत रहो और जानो कि मैं यहोवा हूं। यह एक प्रभावकारी तैयारी है सभी परमेश्वर में परिश्रम करने वालों के लिए। दुनिया की दौड़ भाग में और जीवन की तनाव भरी गतिविधियों से होकर गुजरने वाला जल्दी ही एक हल्के फुल्के और शांत वातावरण से घिर जाएगा। उसे एक नई भरपूरी से शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य भेंट की जाएगी और उसके जीवन से एक खुशबू प्रकट होगी, एक स्वर्गीय सामर्थ्य जो उन व्यक्तियों के हृदय तक पहुंचेगी